अनजाने में ही सही, लेकिन इशिका और अभिमन्यु मर्चेंट फैमिली के पास एक अनजान विला में कैद हो चुके थे। इशिका राधिका को वहां से निकालना चाहती थी। राधिका से मिलने के बाद वो काफी परेशान भी हो गई थी, क्योंकि राधिका को ईशानी के बारे में पता चल गया था। राधिका की बातों से पहली बार इशिका को ये महसूस हुआ कि उसने उन्हें निराश कर दिया, वो ईशानी को बचा नहीं पाई थी। इशिका अभिमन्यु के साथ अपने कमरे में आराम कर रही थी, वो राधिका के बारे में ही सोच रही थी। इस बीच कमरे के लैंडलाइन पर गौतम मर्चेंट का कॉल आया। कॉल पर गौतम मर्चेंट से बात करने के बाद इशिका अभिमन्यु से पूछे बिना ही मर्चेंट फैमिली के साथ टेस्ट करवाने के लिए जा रही थी। जैसे ही इशिका कमरे से बाहर निकली, उसे कुछ गार्ड्स दिखाई दिए जो उसे मर्चेंट फैमिली के लैब में ले गए। वहां गौतम मर्चेंट और एक डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। गौतम को देखकर इशिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए। इशिका ने चारों तरफ देखा। उस कमरे में एक इंसान की पूरी बॉडी चेकअप करने के लिए जरूरी सारी मशीनें रखी हुई थीं। इशिका की परेशानी कम करने के लिए गौतम मर्चेंट ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होगा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना? सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। इसके अलावा मुझे कोई बीमारी नहीं है। इशिका समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाती रहती थी। इशिका की बीमारी के बारे में सुनते ही गौतम मर्चेंट ने कहा, ओह, तो तुम भी इसी बीमारी से जूझ रही हो। ये जेनेटिक डिजीज है जो तुम्हें तुम्हारी दादी से मिली है। तुम्हारी दादी? इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी कर पाते, इशिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, 3 दिन बाद मुझे इन्फ्यूजन लेना जरूरी है। उम्मीद है आपके यहाँ सारी अरेंजमेंट होगी। रही बात इनिशियल चेकअप की, तो मैं तैयार हूँ, आप बाहर जा सकते हैं। काफी अच्छे से कोऑपरेट कर रही हो, आखिरकार मैंने पासा ही ऐसा फेंका है, गौतम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अपनी जीत पर खुशी हो रही थी कि कैसे एक फोन कॉल ने इशिका को उनकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। उनकी बात सुनकर इशिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ चेकअप करने के लिए इस वजह से आई हूँ क्योंकि आपने मुझे ये धमकी दी थी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मेरी माँ को नुकसान पहुँचाओगे, और मैंने आपकी बात मानकर टेस्ट करने के लिए हाँ कह दिया तो आप अभिमन्यु और माँ को जाने देंगे? इशिका बस वही बातें दोहरा रही थी जो गौतम ने उसे कॉल पर कही थी। गौतम ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता नहीं बल्कि सच भी यही है। अर्पित को मैंने नहीं भेजा था, पर जिस तरह से तुम राधिका को देखकर इमोशनल हो रही थी तो मुझे लगा कि ये तुम्हारी कमजोरी होगी। तुम्हारा पति भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था तो दोनों के बीच में काफी प्यार होगा। मैंने सोचा क्यों ना इन्हें हथियार बनाकर तुम्हें मजबूर किया जाए। आपकी उम्र की ही तरह पुराना आपका प्लान है। खैर, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं। बाकी धीरे धीरे आपकी सारी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी मिस्टर मर्चेंट, इशिका ने जवाब दिया। वो कहने में नहीं बल्कि करने में यकीन करती थी, इसलिए उसने गौतम मर्चेंट की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं की। हाँ, सही कहा, टाइम आने पर सब साबित हो जाएगा। देखते हैं कौन सच्चा साबित होता है और कौन झूठा, गौतम ने जवाब दिया और फिर डॉक्टर को आगे की प्रोसेस शुरू करने का इशारा किया। गौतम डॉक्टर के साथ उसे वहां छोड़कर चले गए थे। इशिका ने एक नज़र डॉक्टर की तरफ देखा और फिर सख्त लहजे में कहा, चेंजिंग रूम कहाँ है? वो उस ओर, आगे जाने पर लेफ्ट में मिल जाएगा, जल्दी आइएगा, तब तक मैं पूरी तैयारी कर लूंगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। उसने इशिका के साथ कोई खास बातचीत नहीं की क्योंकि उसका काम सिर्फ इनिशियल चेकअप करने का था। मर्चेंट फैमिली नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी सब्जेक्ट किसी के साथ ज्यादा जान पहचान बनाए। वो चेंज करने जाने के बहाने इधर उधर देख रही थी, कुछ चीजें उसे वाकई हैरान कर रही थी। ये जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उससे ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट करते होंगे, पर ये लैब तो पूरी तरह खाली है। ये विला काफी बड़ा है और आसपास और भी बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो क्या इनके एक्सपेरिमेंट वहां पर होते हैं? समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट कहाँ से लेकर आते हैं, इशिका ने मन ही मन कहा। उसके बाद इशिका चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु की नींद टूटी तो इशिका उसके पास नहीं थी। अभिमन्यु जल्दी से कमरे से बाहर आया। सिक्योरिटी गार्ड्स राधिका के कमरे के आगे खड़े थे और कुछ गार्ड उनके कमरे के आगे थे। अभिमन्यु ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। उनके वहां होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक झटके में राधिका के कमरे का दरवाजा खोला। राधिका नींद में थी और उसका ध्यान रखने के लिए श्रुति उसके पास में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से श्रुति का ध्यान टूटा। उसने अभिमन्यु की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं मिस्टर राजवंश? क्या इशिका यहाँ पर आई थी? वो मेरे कमरे में नहीं है, अभिमन्यु ने पूछा।
श्रुति ने नामे सिर हिला दिया था। उसके चेहरे के भाव गंभीर होने लगे थे, जिसे देखकर अभिमन्यु की परेशानी भी बढ़ गई थी। इशिका का उसके और राधिका दोनों के ही कमरे में ना होने का मतलब साफ था। श्रुति ने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीमी उदास आवाज में कहा, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी इंसान का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। जरूर उन्होंने राधिका का नाम लेकर इशिका को ब्लैकमेल किया होगा। अगर आप उनके बारे में इतना ही जानती हैं, तो आपको इस खतरे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। आपको अवेयर रहना चाहिए था और मिसेस सिंघानिया का ध्यान रखना चाहिए था। आपकी लापरवाही की वजह से हम सब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अभिमन्यु ने हल्के गुस्से में कहा। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ मिस्टर राजवंश, पर इतने सालों में जब मर्चेंट फैमिली नहीं आई तो हमें यही लगा कि उन्होंने राधिका से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। हम नहीं जानते थे कि आदर्श पीछे से इतनी बड़ी चाल चल जाएगा, श्रुति ने जवाब दिया। आज जो भी हो रहा था उसकी नींव कहीं ना कहीं आदर्श ने ही रखी थी। उसने ये सब राधिका को प्रोटेक्ट करने के लिए भले ही किया हो, लेकिन मर्चेंट फैमिली की जो हैसियत थी उससे वो ज्यादा दिन तक सच छुपा भी नहीं सकता था। अभिमन्यु आगे कुछ नहीं बोला और गुस्से में बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी कुछ गार्ड उसके सामने आए और उनमें से एक काफी पोलाइटली बोला, सॉरी सर, लेकिन आपको यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर हिम्मत हो तो रोक कर दिखा दो, अभिमन्यु ने ठंडी आवाज में कहा। उसने गार्ड को दूसरी तरफ धकेला और सीधे अपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए थे। वो वापस अभिमन्यु को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगा। तभी उसके पास गौतम मर्चेंट का कॉल आया। उन्होंने कहा, उसे आने दो। ओके सर, गार्ड ने बोला और फिर उसने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को रोकने का इशारा किया। अब अभिमन्यु को आगे जाने से कोई नहीं रोक रहा था। अभिमन्यु लिफ्ट के पास गया तो वो क्लोज थी, इसलिए वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। दो फ्लोर नीचे पहुंचने के बाद उसे सीढ़ियों के पास गौतम मर्चेंट दिखाई दिए। अभिमन्यु के पूछने से पहले ही उन्होंने उसे देखकर कहा, अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, शुरुआती चेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। मैंने आपसे कहा था कि हम किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे? आप पहले से ही इल्लीगल काम कर रहे हैं, ऊपर से बिना सब्जेक्ट के कॉन्सेंट लिए आप उस पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं मिस्टर मर्चेंट, अभिमन्यु ने गुस्से में सख्त आवाज में कहा। मैंने चेकअप का नाम लिया है अभिमन्यु राजवंश, ना कि ये कहा है कि तुम्हारी पत्नी को किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। चिंता मत करो, बिना तुम्हारे कॉन्सेंट के हम कुछ नहीं करेंगे और तुम खुद अपनी मर्जी से हमें इसकी इजाजत दोगे, गौतम मर्चेंट ने कहा।
उनका इतना कॉन्फिडेंस देखकर अभिमन्यु को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। गौतम ने उसके हाव भाव को परखते हुए कहा, काफी गुस्से में लग रहे हो, आओ बैठकर बात करते हैं। नो थैंक्स, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर वापस कमरे की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ इशिका चेंजिंग रूम के अंदर थी। वहां किसी तरह का कमरा लगा हुआ नहीं था। कमरे के अंदर आते ही इशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने बालों में से कुछ हेयर क्लिप निकाली। बहुत घमंड है ना आपको मिस्टर गौतम मर्चेंट, आपकी बर्बादी की दास्तां मैं लिखूंगी और उसकी शुरुआत अभी से होती है, इशिका ने कहा और फिर उन क्लिप्स को खोलने में लग गई। वो बहुत सावधानी से उन क्लिप्स के अंदर लगे ट्रैकिंग डिवाइस को वहां पर सेट कर रही थी। पृथ्वी और अभिमन्यु की प्लानिंग डिफरेंट थी, तो इशिका ने मर्चेंट फैमिली को ट्रैक करने के लिए दिशांग के साथ मिलकर एंड मोमेंट पर अलग प्लान बनाया था। इशिका अपने प्लान पर चल रही थी, बस अब दिशांग को उन्हें ट्रैक करके उन तक पहुंचना था। फिलहाल के लिए इतना ही। आज मैंने न्यू नॉवल शुरू की है, इसके ज्यादा भाग बचे नहीं हैं। आपको मेरी प्रोफाइल पर गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनर नाम से कहानी मिल जाएगी। नीचे उसका छोटा सा प्रोमो शेयर कर रही हूँ, आपको कहानी अच्छी लगेगी। आज ही उसके 10 पार्ट पब्लिश किए हैं, कल टाइम मिला तो 5 पार्ट एक साथ पब्लिश कर दूंगी, पर 2 पार्ट तो रोजाना के आएंगे ही, तो पढ़कर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। आप कहानी का नाम लिखकर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। दीवा गोइंका, जो अपने पापा के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए उनकी कंपनी के मैनेजर रक्षित दीवान की हेल्प लेती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। दीवा रक्षित के इरादों से अनजान थी कि वो बिजनेस डील के बहाने उसे एक अमीर बिजनेसमैन को बेचने जा रहा है। दीवा रक्षित से तो बच गई, लेकिन उस रात गलती से वो पहुंच गई एक अमीर बिजनेसमैन आर्यंज कपूर के कमरे में। नशे में दीवा और आर्यंज के बीच सारी हदें टूट गईं। क्या सब एक इत्तेफाक था या आर्यंज कपूर की सोची समझी साजिश जिसमें दीवा फंस गई? जानने के लिए पढ़िए गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनेयर।